हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण मल्ला मंडल इस्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भगवत गीता के भक्ति शास्त्र के 18वें अध्याय के अध्ययन के अंतर्गत हम 18वें श्लोक जिसमें कर्म कार्य करने की प्रेरणा के तीन कारण है और कार्य तीन प्रकार से अथवा तीन साधन से होता है। तो पहले ज्ञानम गेयम परिज्ञाता, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, जिसके द्वारा किसी को जाना जाए। तो प्रायः हम जानते किससे हैं, भाई ये व्यक्ति मैं सामने देखता हूं कि ये धर्मात्मा बैठा है, कैसे मुझे पता लगता है, किससे जानता हूं, किस चीज से जानता हूं, आंख से देखकर या उसका आवाज सुन के कान से। इसका मतलब ज्ञानम जो है वो करण के साथ समान है। नीचे देखो, नीचे लाइन में करण है, इंद्रियों से होगा ना, ज्ञान होगा इंद्रियों से। हमारे पांच इंद्रियों का नाम क्या है, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। अब गेयम जो है, गेयम वैसे है आत्मा, भाई हमें जानना किसको है, आत्मा को और परमात्मा को। तो इसमें जो दूसरा कर्म है उसके द्वारा जाना जाएगा, क्योंकि ये विभाग है निष्काम कर्म योग से ज्ञान में जाना। तो इसमें जो गेय है वो नीचे में जो कर्म है ये उससे उसके समान है, उसके बराबर है। अब परिज्ञाता और कर्ता एक ही बात है, कर्ता इति। परिज्ञाता का मतलब जानने वाला, कर्ता माने जो काम कौन करेगा, जो जानता है वो करेगा। तो तीन पहले नेम है या शिक्षा है या प्रेरणा है, तीन पहले नाम है सॉरी नेम है, नेम है, शिक्षा है और प्रेरणा है। और तीन काम करने का संग्रह है, काम कैसे पूरा होगा, तीन से। तो ये बातें यहां कही गई है। तो 14 शब्द का अर्थ है प्रेरणा या नेम या शिक्षा। गेय कर्म, गेय का अर्थ है जानना, किसको जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, किसको, परमात्मा को। कैसे जानेंगे, कर्म करने से, निष्काम कर्म से। तो फिर आएगा ज्ञान, फिर होगा ध्यान, फिर होगा भक्ति। चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के व्याख्या करने से पहले कहते हैं ये है ज्ञानी के लिए, ये जो नेम है ये है ज्ञानी का। ज्ञानी जो त्यागी है, सात्विक, जो सात्विक त्यागी है, जो सन्यासी है, जो ज्ञान के रास्ते पे जाता है, उसको ये रास्ता है। भक्त के लिए इसकी जरूरत नहीं है। लिखा है भक्त जो है वो तो कर्म योग को ही त्याग देता है, वो तो भागवत के 11वें अध्याय का स्कंद का श्लोक दिया है कि भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को शास्त्र के नियम के अनुसार कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी भक्ति करते हैं वो बहुत है। फिर कहते हैं ये श्लोक एक भागवत का, उसकी टीका पूरी दी है। और फिर मुख्य बात क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है भक्त के लिए, कि हमारी चेतना जितनी शुद्ध होगी उतनी मात्रा में हमारा ज्ञान उदय होगा। अच्छा अब वापस याद कीजिए तीसरे अध्याय को, तीसरे अध्याय का नाम क्या है, कर्म योग का लक्ष्य क्या है, कर्म योग क्यों करते हैं। निष्काम कर्म योग का लक्ष्य है अंतःकरण की शुद्धि, क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की जितनी शुद्धि होगी उतना हमें अधिक ज्ञान जल्दी होगा। ये सिद्धांत ये हो गया कि हमारी चेतना की शुद्धि जितनी होगी, अंतःकरण में चेतना भी है, जो दूषित है उसको शुद्ध करनी है। अंतःकरण में तीन चीजें तो सबको याद होती है सदा, अंतःकरण में तीन है, कौन सी है, मन बुद्धि अहंकार, और चौथी है चेतना, दूषित चेतना या चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो इनको शुद्ध करते हैं हम किससे? निष्काम कर्म योग से। लेकिन भक्ति तो अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि उसको दूसरे साधन की जरूरत ही नहीं है, तो काय के लिए कर्म करे शुद्ध करने के लिए? ये तो चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा भाई, भगवान के नाम से शुद्ध हो जाएंगे। भक्ति तो अपने आप में शक्तिशाली है। तो पहले तो ये कहते हैं जितनी मात्रा में हृदय की शुद्धि होगी निष्काम कर्म में, उतनी मात्रा में ज्ञान का उदय होगा। इसलिए ज्ञान के उदय के लिए सन्यासी को निष्काम कर्म योग करना चाहिए, तभी हृदय की शुद्धि होगी, तब ज्ञान होगा। ज्ञानी के लिए यह जरूरी है कि, परंतु भक्त को जरूरत नहीं है। जो पहले ज्ञान के स्तर पे पहुंच जाए उसको तो फिर कर्म की जरूरत नहीं है। फिर छठे अध्याय का दूसरा ही श्लोक है, दूसरा है मेरे ख्याल में, छह का तीसरा है। क्या है छह का तीसरा? आरुक्षुर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारुस्तस्यैव क्षमक कारणम उच्यते। जब योग का अभ्यास करे तो कर्म जरूरी है, जब योग में सिद्धि हो तो कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कर्म त्याग दो। अब सिद्धि हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो हो गया। और दूसरा श्लोक भी है 3:17, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में आनंद लेता है, आत्मा में संतुष्ट है और आत्मा में तृप्त है, तो उसको कर्म करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उस ज्ञान से उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। और फिर एक भक्ति के लिए विशेष उसको जरूरत नहीं है। भक्तों ये तो ज्ञानियों का है। भक्त के लिए तो भागवत का श्लोक दिया है कि गोपियों का कृष्ण के साथ रास लीला का श्रवण करने से हृदय रोग काम का नाश हो जाता है। तो भक्तों को तो इस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान का हृदय कौन शुद्ध करता? भक्तों का हृदय कौन शुद्ध करता है? चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, भक्तों का हृदय शुद्ध करता है भगवान। कैसे? बोला कथा सुनने से। प्रवेश करण रंध्राणाम स्वानाम सरोरवाम, कानों के द्वारा हृदय में जाके और धुनोपी शमलम कृष्ण, सब कृष्ण सारा मैल धो देता है, ये श्लोक लिखा है। तो भक्त को तो हृदय पवित्र करने की जरूरत ही नहीं। अब ये बात कह दी जनरल, इसका अर्थ है इस श्लोक में भक्तों के को ये इसकी जरूरत ही है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अब लिखते हैं आगे। अब वापस इस श्लोक पे आते हैं। अब श्लोक पे क्या कहते हैं? ज्ञान का जो साधन है, इसका मतलब है जिसके द्वारा किसी को जानना चाहिए। बोला ज्ञान है क्या? इसका मतलब ज्ञान से काम करना चाहिए। तो ज्ञान, सामान्य ज्ञान किसको कहते हैं? आप पढ़ के आए, आपको ये पता है। सामान्य ज्ञान किसको कहते हैं? ठीक है, अपने भगवत गीता में ज्ञान की परिभाषा क्या है? सामान्य ज्ञान की परिभाषा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। सीधी सी बात है भाई, ज्ञान की परिभाषा है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये है ज्ञान की परिभाषा। तो ज्ञानी की परिभाषा यही है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है। और ज्ञेय कौन है भाई? ज्ञानी के लिए आत्मा ज्ञेय है, आत्म साक्षात्कार करना है, और योगी के लिए परमात्मा ज्ञेय है आत्मा के साथ, तो ज्ञेय का पता लग गया। अब ज्ञाता कौन है? ज्ञाता है जीव, परिज्ञाता। पर तो इतने में काम नहीं होता है। फिर क्या है इसका? कर्म के साथ तीनों का संबंध है। ये तीनों कर्म से संबंधित है। कौन तीनों कर्म से संबंधित है? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। तो कर्म से कैसे संबंध है? बोला सन्यासी को समझना चाहिए इसके लिए नेम है। कौन सा नेम है? कौन सी प्रेरणा है? चोदना। ये समझना चाहिए ज्ञानी को क्या है। इसके दो अर्थ हमको हमने आपको बताया, शिक्षा नेम, और प्रभुपाद ने लिखा है प्रेरणा। बोला पहला आधा जो श्लोक है, पहले आधा जो श्लोक है मतलब दो लाइन, उसको नीचे की दो लाइन में समझाया गया है। अब आप देखिए श्लोक को, पहले की दो लाइन को नीचे की दो लाइन में समझाया गया है। तो पहले की दो लाइन में क्या है, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता ये प्रेरणा का कारण है। किसकी प्रेरणा? कर्म की। तो कर्म कैसे होगा उसके लिए नीचे की दो लाइन में बताया हुआ है। कर्म होगा करण से, कर्म से और कर्ता से। अब इन तीनों को जैसे हमने पहले आपको बताया, चक्रवर्ती पाद ने इसको बनाया है कि ज्ञान का यहां अर्थ है आत्मज्ञान, वो ज्ञान का विषय है, उसको जानना है। उसको कैसे जानेंगे? बोला कर्म से। कैसे जानेंगे? कर्म से। और परिज्ञाता और नहीं परिज्ञा ज्ञान जो नहीं ज्ञान को कैसे जानेंगे? करण से। करण से ज्ञान करण और कर्म ज्ञेय कर्म से और परिज्ञाता दोनों में एक ही है। परिज्ञाता या कर्ता एक ही बात है। तो निष्काम कर्म योग को करने के लिए ये तीन चाहिए, तब कर्म का संग्रह होगा, कर्म संपूर्ण होगा। तो कर्म का नियम ये है कि इन तीनों के द्वारा कर्म पूरा होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, तीन प्रकार के हमारे नित्य कर्म में तीन प्रकार की प्रेरणा होती है। रोज कोई भी काम करे ना, तीन प्रकार का क्या लिखा है, प्रेरणा होती है। ये चौदना की परिभाषा है। पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर क्या जानना है और कौन जानेगा। इसको आप ऐसे समझे कि भाई भाई प्रसाद बनाना है, प्रसाद बनाना है, पहले तो जानकारी होनी चाहिए क्या बनाना है। रोटी बनाएंगे कि सब्जी बनाए, चावल बनाएंगे कि दाल बनाएंगे, ये पहले पता लगना चाहिए। फिर बनाएंगे का पता लग गया, लेकिन बनाना किसको आता है? भाई जिसको बनाना आता है उस कारीगर को बुलाओ ना, तो जानकार है उसको बुलाओ। और फिर जो जानकार आएगा वो कार्य करेगा। भाई क्या के लिए प्रसाद बना रहे हैं? बोलो भगवान को भोग लगाने के लिए। तो ये सब चीजें साथ साथ में जाननी पड़ेगी। तो कैसे बनाएगा? बोला सामग्री सारी चाहिए। इसलिए हम एक शब्द कहते हैं जो जानकार होते हैं उसको कहते हैं ये कलाकार है, ये इस काम को जानता है। तो प्रभुपाद जी उस दृष्टि से लिखते हैं तीन प्रकार की सब कार्य में प्रेरणा होती है। पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर किस चीज को जानना है ये पता होना चाहिए, फिर कौन जानता है, भाई कौन जानने वाला है, कौन आदमी, कौन है व्यक्ति। तो ज्ञान ज्ञान का विषय और जानकार। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कार्य के लिए कुछ औजार चाहिए। लिखा है औजार, लिखा है क्या लिखा है? उपकरण ना, इंस्ट्रूमेंट लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क। हाँ क्या लिखा है? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। हम तो कहेंगे वो भाई, अब बिजली वाले को बुलाएगा क्या कहेगा, पेचकस लाएगा कि प्लास लाएगा, इसको कहते हैं औजार। तो औजार हमारे क्या है काम करने के? इंद्रियां। इंद्रियां है उपकरण। फिर है काम जिसको करना है, किससे करना है? इंद्रियों से। क्या करना है, कौन सा काम करना है? पकाने का काम करना है, कपड़े सीने का काम करना है। कौन करेगा? करने वाला। ये तीन हो गए। अब प्रभुपाद कहते हैं मानव समाज में ये जो सब चीजों की आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं पहले कोई कार्य शुरू करते हैं ना, उससे पहले पहले तो कोई हमारे को प्रेरणा होनी चाहिए भाई क्या काम करना है। जब प्रेरणा हो गई तो उसके बाद हम बैठ के पहले उस काम की सारी योजना बनाएंगे। वो अब काम नहीं बना है लेकिन योजना बन गई दिमाग में। अब ये समझ में आया कि हमारे को हलवा बनाना है तो इतनी सूजी चाहिए, इतना घी चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, इतनी लकड़ी चाहिए, ये तो जानकारी हो गई। कारीगर भी आ गया, कारीगर जो बनाना जानते हैं उसको भी बुला लिया। तो पहले तो योजना बनाएंगे, वो तो पेपर पे किताब में बनाया, दिमाग में बनाया, फिर उसको करने के लिए सारा साधन। तो प्रभुपाद कहते हैं पहले ऐसे मन में सूक्ष्म रूप से उसका योजना बनाते हैं और फिर उस कार्य को करते हैं। तो पहले मानसिक रूप से हम उस कार्य का विचार करते हैं, सोचते हैं कैसे करना चाहिए, करने की इच्छा करते हैं और इसको कहते हैं प्रेरणा। प्रभुपाद जी प्रेरणा की परिभाषा क्या लिखते हैं देखो, पहले सोचना समझना करने की इच्छा करना, इसको प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रेरणा कहां से लेनी चाहिए, शास्त्र से और गुरु से। अब आप इस चीज को जो हमने पहले दो शब्द कहे थे, अब इसमें बिठा के दिखाओ। जो शब्द चौदना है इसके लिए चक्रवर्ती निपाद ने जो दो शब्द कहे हैं और प्रभुपाद जी के इस परिभाषा से शास्त्र और गुरु के साथ दोनों को बिठा के दिखाओ। शास्त्र हो गया नेम, गुरु हो गई शिक्षा, शिक्षा गुरु से हुई, शास्त्र से नेम आया। तो दो बात, दोनों बातें दोनों एक है लेकिन कहने का ढंग दूसरा है। बात समझ में आ रहा है, शिक्षा शास्त्र गुरु से, नेम शास्त्र से, इसको कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, प्रभुपाद जी के। ये जो परिभाषा है ये चौदना शब्द की, ठीक है, जिसको प्रेरणा कहते हैं। तो प्रेरणा शास्त्र और गुरु से लेना, इसका मतलब नेम और शिक्षा के अनुसार कार्य करना। अब कहते हैं जब आपके पास प्रेरणा है तो फिर कार्य करने वाला चाहिए, तब कार्य होगा। बोले कार्य करने वाला मिल गया, कार्य का पता लग गया। फिर बोला इंद्रियां हो जिससे करेंगे, करेंगे किससे करेंगे, भाई कोई इंद्रियों से करेंगे ना, तो इंद्रियां चाहिए और इंद्रियों के अंदर और एक अंतःकरण मन भी है जो इन सारे इंद्रियों का केंद्र है। हमारे एक मिठाई बनाने का हमारे परिवार में एक हमारे बड़े पिता के ताऊ है ना, वो मिठाई के कारीगर थे, दो तीन तीनों। वो कहते हैं मिठाई हाथ चलता है इससे नहीं होती है, हमारी आंख बताती है कि ये पक गया कि नहीं है, उसके रंग से ये आंख से पता लगता है। एक नज़र से कब बंद करना है, कब उतारना है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। ऐसे नहीं है कि अपने आप हिलाते रहे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी इंद्रियां एकदम तत्पर रहती है तब ये काम होता है। तो यहां लिखा क्या, अब क्या हम क्या समझ में आ गया हमको कि इंद्रियों के द्वारा कार्य को करने वाला संपन्न करेगा। तो पहले क्या मिला, प्रेरणा कहां से मिली, शास्त्र से और गुरु से। फिर बनी योजना काम की और फिर इंद्रियों से काम किया, करने वाले ने किया और जो काम था वो संपन्न किया। और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तो इस सारे को, इस सारे कार्य को कर्म संग्रह कहते हैं। अब हमारा ये विभाग पूरा हुआ, तीसरा विभाग है योग की सीढ़ी का सारांश, पहला भाग। योग सीढ़ी का सारांश पहला भाग, हमारे कर्म तीन गुणों के अनुसार कर्म, हमारे सारे कार्य तीन गुणों के अनुसार है। तो अब हम क्या पढ़ने जाएंगे, हमने ज्ञान पढ़ा ना, फिर कर्म पढ़ा, फिर कर्ता पढ़ा, तो ये तीनों सात्विक कौन से, राजसिक कौन से और तामसिक कौन है, अब ये बात चलेगी। तो ये चलेगा 19 श्लोक से लेकर 40 तक, ये विभाग चलेगा 19 से 40 तक। तो आइए पहला पढ़ते हैं 19वां, ज्ञानम कर्म च कर्ता च। त्रैधेव गुण भेदितः प्रोच्यते गुणसांख्याने यथावश्नोतान्यपि। शृणु का मतलब तो सबको आता है, सुनो। क्या सुने? तीन के विषय में सुनो। किसके? ज्ञान, कर्म, कर्ता, त्रिविध गुण भेदितः। प्रकृति के तीनों गुणों के भेद से ज्ञान को, कर्म को और कर्ता को मुझसे सुनो। तो आपसे सुने कहीं और भी इसका वर्णन है क्या? अगर ये पूछा जाए तो लिखते हैं, तानी अपि यथावत प्रोचते गुण सांख्याने। शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसका मतलब भगवान जब कोई बात कहते हैं तो शास्त्र का प्रमाण देते हैं। तो पहली लाइन में तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता की व्याख्या मैं करूंगा जैसे शास्त्रों में की हुई है। ये बहुत सीधी बात है। अब प्रभुपाद ने जो लिखा है तात्पर्य, उसको समझने के लिए बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है कि 14वें अध्याय में 6ठे श्लोक में क्या लिखा हुआ है? सतोगुण निर्मल है, प्रकाश होता है, तमोगुण राग वाला होता है। इसमें क्या सिखाया? इसमें सिखाया कि गुण बंधनों का कारण है। गुण क्या है? बंधनों का कारण। फिर 17वें अध्याय में, 17वें अध्याय में बताया गया, 17:4 में सात्विका देवान यान्ति। इसका अर्थ है गुणों के द्वारा हमारा संस्कार कैसा बनता है। 14वें अध्याय में गुण बंधन का कारण है, 17वें अध्याय में गुणों से संस्कार बनता है जो हमको दूसरे जन्म में ले जाता है, और अब तीनों गुणों के द्वारा कैसे ज्ञान, तीनों गुणों के अंतर्गत ज्ञान कैसे होता है, कर्म कैसे होता है, कर्ता कैसे होता है, उसका वर्णन होगा। तो ये लिखा है बलदेव विद्याभूषण ने। अब प्रभुपाद ने देखो यही बात लिखी, आप पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब वैसे आप पढ़ो नहीं समझ में आएगा, अब सीधा पढ़ो ऐसे। 14वें अध्याय में तीनों प्रकृति के गुणों का वर्णन विषय विस्तार से किया गया है। अच्छा, ये तो पढ़ लिया। और उस अध्याय में ये कहा गया है सतोगुण जो है प्रकाश करता है, रजोगुण जो है और भौतिक, और तमोगुण जो है वो आलस है। ये तो ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ गुण बंधन का कारण है। और फिर दिखा है बंधन का कारण, जो तीसरी लाइन में आ गया बंधन का कारण है। ये मुक्ति का साधन नहीं है, जहां तक सतोगुण भी बंधन में डालता है। 17वें अध्याय में क्या लिखा है? पूजा किसकी करता है सतोगुण वाला। तो इससे अब ये नहीं लिखा है कि संस्कार उससे बनते हैं जिससे दूसरे जन्म में जाता है, लेकिन भाव वहां से लिया हुआ है। अब इस यहां बताया जा रहा है तीन गुणों के अनुसार ये कैसे हैं। अब हम ज्ञान को पहले तीन गुणों में समझेंगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययं ईक्षते इव अविभक्तान् विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। उस ज्ञान को सात्विक मानो, ये तो ठीक है। अब इसमें अव्यय शब्द को, अव्यय ईक्षते को पहले समझो। अव्यय का मतलब क्या है? अविनाशी कौन है? अविनाशी भगवान भी है, अविनाशी जीवात्मा भी है। तो यहां वर्णन है जीवात्मा का। भावम अव्ययम ईक्षते, और फिर है अविभक्तम, और ये नैकम, येन ऐकम, जो सतो का गुण का ज्ञान कौन सा है जिसके द्वारा व्यक्ति देखता है? क्या देखता है? अविनाशी आत्मा। एकम अव्ययम भावम, एक अविनाशी आत्मा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का मतलब 84 लाख जूनिया में भ्रमण करता है, और अविभक्तम, अविभक्तम का मतलब टूटा फूटा नहीं है, वही का एक ही है, परंतु शरीर विभक्तेषु, शरीर बहुत है। तो सात्विक ज्ञान कौन सा है? जिसको ये समझ में आ जाए कि एक ही आत्मा है, जो कभी देवता था अब मानव है, ये ऋषि है, ये गुदा है, ये कुत्ता है, ये सब विद्या विनाश संपन्न ब्रह्मणी कवि अश्विनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, ये उसी श्लोक के दृष्टि से देखेंगे ये है सात्विक ज्ञान, ठीक है। तो इसमें आप शब्दों को पहले अपने दिमाग, क्योंकि मैं भी 18वां अध्याय कम पढ़ा, तो ये शब्दों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अव्यय भाव है, अव्यय एक, एक को लेंगे भाव और अव्यय के साथ, एक अविनाशी आत्मा को जो देखता है सब शरीरों में, के है एक लेकिन दिखती है सब नाना प्रकार के शरीरों में, तो शरीर अनेक है, आत्मा एक है, ये है सात्विक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान की ये परिभाषा है। श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक ही जीव सब प्राणियों में है, चाहे देवता हो या मानव हो या पशु हो या पक्षी हो, लेकिन आत्मा तो एक ही है, जो ऐसे देखता है वो सत्व सतोगुण का ज्ञान है उसके पास, ठीक है। अब वो नाना शरीरों में किस कारण से है, अपने कर्मों के कारण। अब प्रभुपाद ने लिखा है, इसको जरा समझिए, सातवें अध्याय में जीव को भगवान की पराशक्ति कहा गया है, लिखा ठीक है ना। तो पराशक्ति तो भगवान की एक ही है, इसका मतलब जो भगवान की एक पराशक्ति जीव को देखता है कि सब में एक है, वो सत्विक ज्ञान। और फिर प्रभुपाद जी जीव के लिए जो शब्द आया है श्लोक में उसकी परिभाषा कर रही है, अव्यय की, शरीर जो है नाशवंत है, आत्मा अविनाशी है, शरीरों में विभाजन है, शरीर भी अलग अलग लगते हैं, क्योंकि 84 लाख की नाना प्रकार की जूनियां हैं, परंतु जो उसके अंदर जीव है वो अविभाजित है। अविभाजित जीव का क्या परिभाषा है, क्यों पराशक्ति है, एक ही है भगवान की पराशक्ति, हजार तो है नहीं। अब प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, इसको समझ में कुछ आता है, डिफरेंस आर रिसीव परसीव्ड इन द टर्म्स ऑफ बॉडी, शरीर अलग अलग दिखते हैं क्योंकि नाना प्रकार के शरीर हैं भौतिक जगत में बद्ध जीवों के, परंतु जीव शक्ति दिखती है कि विभाजित है परंतु है नहीं ऐसा। अब देखो ये शक्ति के लिए शब्द है, शक्ति क्या होती है, शक्ति और शक्तिमान में क्या अंतर है, शक्ति होती है निराकार और शक्तिमान होता है व्यक्ति। अब प्रभुपाद लिखा है ऐसा निराकार ज्ञान जो है वो आत्म साक्षात्कार का एक नमूना है, ये भगवान की शक्ति है, ये क्योंकि ज्ञानियों का है विशेष, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विधिराजसम्। पृथक्त्वेन, पहले तो यज्ज्ञानम् विधिराजसम्, इसका मतलब उस ज्ञान को राजस ज्ञान समझो जिसके द्वारा वेति उसके द्वारा जो समझते पृथ्वीत्वेन तु यज्ञानम, ये पृथ्वीत्वेन यज्ञानम का मतलब लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे बुद्धों की विचारधारा अलग, जैनियों की विचारधारा अलग, ज्ञानियों की विचारधारा अलग, भक्तों की विचारधारा अलग, ये तो बहुत सारे विचारधारा है ना आत्मा के लिए। भाई जैन तो भाई बुद्ध तो आत्मा का शरीर खत्म हो गया, आत्मा खत्म हो गई, वो तो ऐसे मानते हैं। तो ये सारे अलग अलग सिद्धांत को जो मानता है, और नाना भावम का मतलब अलग अलग मत, अलग अलग मत। सर्वेषु भूतेषु पृथ्वीविदम, के सारे जो शरीर है वही आत्मा है। मानो इसका अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के शरीर आत्मा एक ही है, वो ऐसे मान लेते हैं। और वो नाना प्रकार के मतों के कारण निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो उसके ज्ञान को राजसिक कहना चाहिए। जो हाँ पृथ्वत्व है ना, अलग समझता है जीव को। बोला ये जीव जो देवता है वो अलग है, मानव है वो अलग है। कोई कहे कि देवता में जो आत्मा है वो अलग है, चूंटी में वो अलग है, मानव में वो अलग है, और शरीर खत्म होगा तो वो भी खत्म हो जाएगी। ये चेतना है, थोड़ी देर के लिए रही है। तो ये कहां से उसने सुना है? बोला नाना मत से सुना है। किसके मत से सुना है? लोकायत मत है, जैन मत है, बुद्ध मत है, मायावाद मत है, न्याय का मत है। तो ऐसे जो नाना मत से जीव को अलग अलग समझता है वो राजसिक ज्ञान है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो कहता है शरीर मरता है तो चेतना भी मर जाती है, इसका मतलब जीव भी खत्म हो जाता है, ये राजसिक ज्ञान है। पहले तो प्रभुपाद सीधा यही लिखते हैं, इसका मतलब आत्मा को मानते ही नहीं है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे से अलग है, क्योंकि चेतना अलग है, परंतु आत्मा अलग नहीं है। इसका मतलब चेतना आत्मा से नहीं आती है, बस थोड़ी देर के जब शरीर है तब आत्मा है, शरीर गया चेतना गई। शरीर ही आत्मा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अलग आत्मा कोई नहीं है। और इसमें कहते हैं ये चेतना थोड़ी देर के लिए होती है। अब प्रभुपाद एक दूसरा मत दे रहे हैं। तो अभी तक क्या हमने मत समझा? शरीर ही आत्मा और चेतना शरीर में है, शरीर खत्म हुआ, चेतना खत्म हुई, आत्मा है नहीं, इसका मतलब दूसरा जन्म होता ही नहीं, इसका अर्थ ये हुआ। अब और इसका एक अर्थ क्या हो सकता है? प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई व्यक्तिगत आत्मा है ही नहीं, एक ही आत्मा सर्वव्यापक है। एक ही आत्मा सर्वव्यापक है जो पूर्ण ज्ञानमय है, लेकिन जब वो शरीर में आती हैं तो थोड़ी देर के लिए अज्ञान, ये है मायावादी, ये है मायावादी के ब्रह्म एक है, वो शरीर से बाधित हो गया है, इसलिए अपने आप को परिच्छिन्न मान रहा है। ये शरीर छूट जाएगा तो ये अखंड ब्रह्म के साथ मिलके एक हो जाएगा। आकाश घट आकाश मट आकाश, ये वो सिद्धांत है। जरा पढ़ के अब देखो ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो पढ़िए जरा। नहीं सब अपने आप पढ़ के समझो, इसको समझ में आ रहा है? ये दूसरा मत है, ये राजसिक लोग हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मायावाद का या निराकारवाद का प्रचार करते हैं, इस तात्पर्य के अनुसार राजसिक है, उनका ज्ञान राजसिक है। अब तीसरा मत प्रभुपाद जी का, शरीर से आगे न कोई आत्मा है न परमात्मा है, ये बुद्ध मत है, ये जैन मत है, ये सब राजोगुण के कारण है। हाँ, कह रहे मानव में आत्मा है, बाकी किसी में नहीं आत्मा है। ये अलग एक मत है, ये अलग मत है। तो ये अब तामसिक ज्ञान कैसा होता है सुनिए। यत्तो कृष्ण वदे कस्मिन् कार्य सक्तम अहेतुकम् अतत्व अर्थय वेद अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम्। यत्तु अहितुकम का अर्थ है जिस ज्ञान के लिए कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण के ज्ञान, न शास्त्र से आया न गुरु से आया, मेरे को जो मन में आया वो ज्ञान, ये हुआ यत्तु अहितुकम का अर्थ है मनमाना ज्ञान, बिना शास्त्र के बिना गुरु के। फिर है ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कृत्स्नम वद एकस्मिन् कार्यम सक्तम्, एक ही प्रकार के कार्य में आसक्त रहते हैं, बस मुझे यही करना आता है यही करूं। कृत्स्नम वद एकस्मिन् कार्य असक्तम्, एक ही प्रकार के कार्य में आसक्त होते हैं। कृष्ण वद का क्या है शब्द अर्थ, पूर्ण रूप से, कृष्ण का मतलब होता है पूर्ण और कृष्ण का होता है अधूरा, पूर्ण रूप से एक ही कार्य में लिप्त रहते हैं। अतत्व अर्थवद का मतलब तत्व को नहीं जानते हैं, अतत्व का मतलब सत्य को नहीं जानते हैं, मतलब वास्तव में जानते नहीं है क्या कर रहे हैं लेकिन उसी को कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान को तमोगुण का ज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, एक तो अहितुकम का मतलब है वो अपने स्वभाव से चलता है, अपने मन से चलता है, तो किसके आधार पे नहीं चलता है, न शास्त्र के आधार से चलता है और न गुरु के आधार से चलता है, ये तो पहला अर्थ हो गया। अहितुकी का अर्थ क्या हुआ, अपने मन माना काम करे, शास्त्र का और गुरु का मार्गदर्शन न ले, और केवल उसके भौतिक कार्य है एकस्मिन, कृष्ण बद उसी को सब कुछ मानता है और कुछ भी नहीं है, जैसे भाई खाना है तो बस रोज ही खाएंगे और कुछ नहीं करना है, जैसे चार पशु वाले कार्य हैं और निद्रा भाई मैं ऐसे में खुश हैं, खाएंगे या नहाएंगे या कोई एक कार्य है उसी को करते रहेंगे, बस वही कार्य। जैसे आप ऐसे लोग बहुत से लोगों को देखें कि रोज उनको काम है कि शराब शाम को पीना है, बस एक ही काम करना है, उसी एक काम को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, बाकी सब काम करते हैं उसी एक के लिए, मजदूरी क्यों करते हैं, बोले शाम को पैसा आए कि शराब पीना है। तो सारा उनकी क्रियाओं का उद्देश्य एक ही होता है, और कामी लोग होता सारा दिन कमाएगा बोला पे मैं जाऊंगा व्यभिचार करने, तो उनका उद्देश्य क्या, यहां लिखा है तीन, या खाने के लिए, या सारा दिन कमाएगा और शाम को जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएगा। बोला काम क्यों करते हैं, बोला तीन काम के लिए, या तीन काम लिखे हैं बलदेव विद्याभूषण, या खाने के लिए, या नहाने के लिए लिखा है, या स्त्री का संग करना। नहाने का अर्थ ये है कि सारा दिन, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं बरसात के दिनों में, हमें मालूम है बच्चे पानी का तालाब होता ना, सुबह जाते थे शाम तक वही होते, जब भूख लगती तब घर आते, सारा दिन पड़े होते हैं, तो एक ही काम करते हैं, कार्य करता है कोई भाई। बहुत से लोग देखो सुबह से कमाते हैं, कमा लिया पैसा आ गया, शाम को खाया खत्म, फिर कल दोबारा कमाएंगे, तो जिंदगी का लक्ष्य एक ही और कुछ नहीं, ये इसका अर्थ है। तो न वेदों के कार्यों में रुचि नहीं है, यज्ञ में रुचि नहीं, जप में रुचि, दान में रुचि नहीं है, वो सत्य को जानते ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और उनका अल्प अल्प एक शब्द है। देखो इसमें तामसिक ज्ञान में कितने शब्द है देख लो, एक तो अतत्व अर्थवद, इसका मतलब सत्य को नहीं जानते हैं, अल्प का मतलब बहुत कम बुद्धि है, पशु के स्तर की बुद्धि है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही रुचि रखते हैं, और अपना मनमाना बिना शास्त्र के कार्य करते हैं और एक ही प्रकार के कार्य में रुचि रखते हैं। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सामान्य व्यक्ति का ज्ञान तमोगुण का होता है। प्रभुपाद जी सीधी बात लिखते हैं, आम व्यक्ति तमोगुण के ज्ञान से तमोगुण के ज्ञान में रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रमाणिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया है, तो उनको ज्ञान किस चीज का है, केवल शरीर का। और शरीर में क्या काम है, चार ही काम है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, बस यही काम करता है। इसका अर्थ ये, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, क्योंकि शास्त्र का निर्धार नहीं है, इसलिए कहता है पैसा ही भगवान है। क्या कहता है, पैसा ही भगवान है। और ज्ञान का अर्थ है इंद्रियों की तृप्ति, और ऐसे ज्ञान का परम सत्य के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पशु के स्तर का ज्ञान है, अल्प है, इसके लिए चार ही प्रकार का काम करता है, ये तमोगुण का ज्ञान है। अब प्रभुपाद ने यहां से नीचे जो लिखा है, ये तीनों श्लोकों का सारांश लिखा है। अब देख लो, यहां से नीचे तीनों श्लोकों का सारांश है। सात्विक जो है, राजसिक कौन सा है, तामसिक कौन सा है, ये सारांश है तीनों। इसके सामने लिख दो तीनों ज्ञानों का सारांश, सात्विक राजसिक और तामसिक का सारांश। अब 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नियतम संग रहेतम राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्मा यत्तत् सात्विकम उच्यते। अब सात्विक कर्म किसको कहते हैं, ज्ञान पूरा हो गया। सात्विक कर्म के कितने गुण हैं देख लो। पहले नियतम, नियतम का अर्थ होता है रोज नियम से करना। रोज नियम से, जैसे रोज सुबह उठ के स्नान करना, रोज सुबह उठ के जप करना, जैसे नियम, तो नियतम का मतलब नियम से। नियम कहां से आया, शास्त्र और गुरु से, ठीक है। फिर है संग रहितम, संग रहितम का हमने देखो दो दिन से हम संग पढ़ के आते हैं। संग रहितम का अर्थ क्या है, कर्तापन का, मैं करता हूं ये भाव नहीं है कर्म में। और संग, हाँ, संग रहितम का अर्थ क्या हुआ, कर्तापन के भाव से मुक्त, कर्तापन भाव शून्य। अब तीसरा क्या है, और राग द्वेषत कृतम, कर्म में न राग है न द्वेष है। ये कर्म अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, या ये बुरा लगता है नहीं करूंगा, ये भाव नहीं है। तो ये हो गए चार। अब पांच क्या है, अफल प्रेप्सुना कर्म, फल की इच्छा नहीं है, तो ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। तो चार चीजें हैं इसमें, चार ही हैं कि ज्यादा हैं, देखो चार है। ये कोई भी कार्य आप में करो उसमें ये चार चीजें हैं तो कार्य सात्विक है, और भगवान के लिए करो तो तीनों गुणों से ऊपर है वही कार्य। भगवान के लिए करो तो तीनों गुणों से ऊपर है, नहीं तो सात्विक कार्य के लिए क्या चाहिए, पहला क्या चाहिए, शास्त्र और गुरु के निर्देश से नित्य रोज उसके नियम से कर्म करना, पहला नियम से करना, दूसरा कर्तापन को छोड़ना, और तीसरा राग द्वेष कर्म में नहीं होके, अच्छा है इसलिए करता हूं, बुरा है इसलिए नहीं करूंगा, नहीं, और चौथा फल की इच्छा ना हो, ठीक है। ये हो गया सात्विक कर्म। अब एक शब्द को समझे, नियतम की परिभाषा और समझिए। नियतम की परिभाषा क्या है, प्रभुपाद जी के शब्दों में, वर्ण आश्रम के हरेक के निर्धारित कर्मों को नियम से करे। अब नियतम, नियमतम का अर्थ क्या हो गया देख लो, अच्छी तरह से पढ़ो। शास्त्र के अनुसार वर्ण आश्रम के कर्मों का पालन, नियतम का अर्थ है नित्य शास्त्र के अनुसार अपने वर्ण आश्रम का कर्म के पालन करना। तो नियतम के साथ क्या शब्द आप पक्का याद करेंगे? वर्ण आश्रम के, शास्त्र में वर्णित वर्ण आश्रम के कर्म। अब देखिए आप, प्रभुपाद जी ने यहां संग रहितन कौन सा शब्द लिखा है? देखो आसक्ति के साथ एक और शब्द लिखा है, अनासक्त। और क्या लिखा है? कर्ता नहीं, वो कर्ता नहीं है, वो लिखा है। देखो लिखा है ना, कर्ता नहीं है वो, प्रभुपाद जी लिखा है कर्ता नहीं है। अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, इसका प्रोप्राइटरी राइट का मतलब मैं इसका मालिक हूं ऐसे नहीं कहता है, मैं करता हूं ऐसे नहीं कहता है। इसलिए उसको कोई ना प्रेम है ना कोई उससे द्वेष है। ये कृष्ण भावना में कार्य करता है, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपने अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, इसका मतलब फल की इच्छा नहीं। अब प्रभुपाद जब का कृष्ण भावना में काम करते हैं तो ये सात्विक काम नहीं हुआ, ये हो गया गुण अतीत कार्य। ठीक है, तो इसमें चार शब्द आपने सीखे कुछ। हाँ, अब हम राजसिक कार्य की बात करेंगे। यत्तु कामे सुना कर्मा सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासाम तदराजसम उदाहृतम। तो इस राजसम कर्म में तीन बातें तो लिखी हुई है सामने। कामेप सुना का मतलब फल की इच्छा से, फल की इच्छा से। दूसरा सहंकारेण का मतलब कर्तापन के अहंकार से, मैं करता हूं। और तीसरा लिखा है पुनः क्रियते बहुला या साम। अब बहुला साम या साम पुनः कृते, पुनः कहां चला गया इसमें? एक मिनट देखने। हाँ, वा पुनः क्रियते। बहुला या साम का अर्थ है बहुत ही कष्ट के साथ, बड़ा परिश्रम के साथ। तो तीन ही बातें हैं राजसित कर्म की, तीन बातें कौन सी हो गई? फल की इच्छा, कर्तापन का अहंकार और अति परिश्रम। अति परिश्रम पुनः शब्द है, उसका अर्थ क्या लिखा है? दोबारा उसी काम को। वैसे तो पुनः का अर्थ यही है, लेकिन इन्होंने यहाँ, हाँ ये पुनः लिखा है ना, सहंकारेण वा पुनः। ठीक है, तो इसका तो तीन बातें हो गई। हाँ, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा ही नहीं है इसका ना,
नहीं।
तो आइए 25वां श्लोक पढ़ते हैं। अनुमंदम क्षम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तामसम उच्यते। अब वो तामसिक कर्म में पहले है अनुबंधम। अनुबंधम का मतलब काम करोगे तो बंधन पड़ेगा। तो बंधन पड़ते हैं दो प्रकार के, दोनों आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। एक बंधन है सरकार का, पकड़ेगा राजा, डांट देगा दंड, और इससे बच गया तो यमराज। तो अनुबंधम की परिभाषा है कार्य करेगा उसका दंड या तो देगा राजा या देगा यमराज। और क्षयम हमसाम, उनके कार्य से क्षय होगा। किसका क्षय होगा? धर्म का क्षय होगा। क्षय किसका होगा? धर्म का क्षय होगा, क्योंकि उसका कार्य शास्त्र के विपरीत है। तो क्षय का अर्थ क्या है? नाश करेगा। और तीसरा क्या करेगा? हिंसा, दूसरे के लिए हानिकार है। अब कितने? दो हो गए, तीन हो गए। अब अनपेक्ष, अनपेक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? चौथा,
परिणाम पर विचार किया गया।
बिना किसी की सलाह लिए हुए, बिना इसका क्या परिणाम निकलेगा उसके बगैर। और पौरुषम का मतलब बलात्, बलपूर्वक। और मोहाद एक और पांचवा हो गया मोहाद, मोह के कारण उसको तामसिक कर्म कहते हैं। अब कितने हो गए तब? सातों, सतोगुण के चार, रजोगुण के तीन और तमोगुण के कितने? छह हो गए। हाँ तो छह हो गए। बोला कार्य करेंगे उसके बाद में बंधन पड़ेगा राजा का या यमराज का, और नाश करेगा धर्म को। किसको नाश करेगा? धर्म को, दूसरों को हानि पहुंचाएगा। और बड़े बलपूर्वक करेगा पौरुषम, किसी का ध्यान नहीं करेगा, किसी से पूछेगा नहीं, और मोहवश करेगा। ठीक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद ने सीधा लिखा है, यमदूत पकड़ेंगे उसको जो शास्त्र के विपरीत कार्य करेगा। भगवान के प्रतिनिधि पकड़ेंगे, अपनी मनमाना काम करेगा तो यमराज पकड़ेगा। फिर लिखा है जो गैर जिम्मेवारी का कार्य होता है, क्या लिखा है गैर जिम्मेवारी के लिए? उत्तरदायित्व रहित कार्य नाश करता है। किसको नाश करता है? प्रभुपाद ने लिखा है हाँ, शास्त्र के निर्धारित नियमों का, इसका मतलब धर्म का नाश करता है। शास्त्र में क्या है? धर्म है। और प्रायः ये कार्य हिंसा के ऊपर आश्रित होता है, जिससे दूसरों को दुख दिया जाता है, जैसे पशु हत्या करो। और ऐसा दायित्व वाला कार्य वो करता है अपने ही अनुभव के आधार पे, दूसरे का राय नहीं लेता है, न शास्त्र का न किसी समझदार का। हाँ, और ऐसा भ्रम वाला कार्य तामसिक होता है। तो छे, चार तीन छ, ठीक है। अब ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, अब कर्ता। मुक्त संगो अहम वादी धृत्य उत्साह समन्विता सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। तो सात्विक कर्ता कौन है, उसका गुण क्या है? पहले मुक्त संगो, मुक्त संगो का अर्थ क्या हो जाएगा? आसक्ति रहित, अनासक्त। किसमें अनासक्त है? कर्म में और कर्म के फल में। दूसरा है अनहम वादी का मतलब है कर्तापन रहित, अहंकार रहित के मैं करता हूं। तो पहला हो गया आसक्ति रहित, दूसरा हो गया कर्तापन रहित, और तीसरा है धृति, धृति उत्साह समन्वित। दोनों शब्द साथ में है, उत्साह के साथ करेगा कार्य और धृति के साथ। धृति का मतलब क्या हो जाएगा? संकल्पबद्ध, मुझे करना है मैं ये करूंगा, संकल्पबद्ध और उत्साह से। अब ये दोनों शब्द आपके उपदेश अमृत में मिला, ये मिल रहे हैं क्या? उत्साह धैर्य निश्चय, तो उत्साह और धैर्य वही है शब्द यहां। ठीक है, कितने हो गए? एक दो तीन चार हो गए। अब पांचवा है सिद्धि असिद्धि, सफलता मिले या असफलता मिले, और निर्विकार, और निर्विकार दोनों में कोई उसमें परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसे रहता है। सफलता हो तो ठीक है, नहीं सफलता हो तो भी ठीक है। ये सात्विक कर्ता है। तो सात्विक कर्ता के कितने लक्षण हो गए? पहला आसक्ति रहित, दूसरा कर्तापन रहित, तीसरा धृति किसे करे, चौथा उत्साह के साथ करे, पांचवा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहे। पांच, ठीक है। पांच, आप कोई भी कार्य करते हैं आप में ये पांच गुण है तो सात्विक कर्ता कहलाओगे। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनाओं का व्यक्ति सदा ही दिव्य स्थिति में रहता है तीनों प्रकृति के गुणों से, क्योंकि उनको कोई भी फल की इच्छा नहीं होती। जो भी कार्य किया जाता है उसमें अहंकार नहीं होता है, मैं करता हूं ऐसे भाव नहीं होता है, और हमेशा उत्साह बना रहता है। जब तक कार्य पूरा नहीं होता है उत्साह के साथ कार्य करता है, कोई तकलीफ आई उसकी चिंता नहीं है, हमेशा उत्साहित रहता है, सफलता हो असफलता हो उसमें समान रहता है, सुख दुख में समान रहता है, ऐसा कार्य करता सात्विक कार्य है। अब तामसिक कार्य का कर्ता का समाचार ले लो, रागी कर्म फल प्रेप्सो लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान वितकर्ता राजस परकीर्तितः। तो राजसिक कर्ता कौन सा है, पहला रागी आसक्त वाला, कर्म फल प्रेप्सु का कर्म के फल का इच्छुक, तीसरा लुब्धो लोभी, और चौथा हिंसात्मको, हिंसा युक्त कार्य में हिंसा हो, असुचि अपवित्र, हर्ष शोकान विताह, अच्छा मिलेगा काम अच्छा होगा खुश होगा नहीं होगा तो दुखी होगा, सुख दुख का से प्रभावित होने वाला राजसिक कर्ता कहलाता है। एक दो तीन चार पांच छ, छह गुण है राजसिक कर्ता के। बोला पहला जो शब्द है रागी वो किसके लिए है, किस में आ सकते है? बोला घर स्त्री धन कारोबार उसमें आ सकते, तो आ सकती किसकी है, वो लिखा स्त्री पर परिवार उसमें है रागी। क्या चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्वर्ग चाहिए, लुब्धा का मतलब है लोभी, ये सब हमको आप मिल जाए, दूसरों को दुख देता है, हिंसात्मक, पवित्र नहीं है, किस बात में कोई कार्य करता है उसमें शुद्धि नहीं रहती है, भाई धंधा करता है तो बेईमानी करता है, मिलावट करता है तो असुचि हो गया, कारोबार करता है पैसा कमाने के लिए मिलावट वाला काम करता है, अच्छा सुख मिल गया तो खुशी होगा, दुख मिला तो हाय हाय करेगा। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, किसी विशेष कार्य में अति आसक्ति हो अथवा फल में अति आसक्ति हो और घर परिवार स्त्री में आसक्त हो, ये चार तीन बातें प्रभुपाद ने आसक्ति में लिखी है, किसी विशेष कार्य में आसक्ति, फल में आसक्ति और परिवार में आसक्ति। अब प्रभुपाद जी दूसरा पक्ष लिखे, ऐसे व्यक्ति को आत्मोन्नति का तो विचार ही नहीं, इच्छा ही नहीं, वो तो केवल ही भौतिक सुख सुविधा के चिंता में लगा हुआ है। अब लुब्धो, अब प्रभुपाद लिखते ये बहुत बड़ा लोभी है, वो समझा जो मेरे से जो मैंने प्राप्त की है ये सदा मेरे पास रहेगी, कभी मैं इसको हाथ से जाने नहीं दूंगा, ये दूसरों से ईर्ष्या करता है और दूसरों के साथ अपनी इंद्रिय तृप्ति के पूर्ति के लिए हिंसा भी कर सकता है, गलत व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए ये अपवित्र है। कैसे, जैसे अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए बहुत से लोग, आप देखें कितने लोग पैसा ज्यादा कमाने के लिए दवाई में मिलावट करते हैं, कितने लोग मरते हैं उससे, बहुत से लोग मर जाते हैं, तो ये हिंसा भी हो गई और अपवित्र कार्य भी होगा क्योंकि मिलावट कर दी, तो हाँ हाँ, तो उसकी वजह से बहुत से लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो किसी ये सब जो है, और सफलता मिल गई तो बड़ा खुश होगा और असफलता मिल गई तो बड़ा दुखी हो गया, ये राजसिक है। अब तामसिक को सुनिए। अयुक्त पराकृत स्तवद शठो नैष्कृतो अलस विषाधी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तामसी कर्ता कौन है? पहला अयुक्त। अयुक्त का मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, जो नहीं करना है उसको। अयुक्त का मतलब जिसका नेम है, युक्त का मतलब भगवान से जुड़ा हुआ, अयुक्त का मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। और प्राकृत का क्या अर्थ है? अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा उसने अपने जीवन में, प्राकृत का मतलब प्रकृति से जो उसको स्वभाव प्राप्त। और स्तबद्ध का मतलब जो जो निमर नहीं है, जो निमर नहीं है इसका मतलब हठी है। और शठों का अर्थ क्या है? कपटी का अर्थ क्या है? मतलब है कि आप जानते हो कि ये मैं काम कर सकता हूं, आपको काम करना आता है, मुझे पता नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, काम जानते हैं लेकिन नहीं करना होता, मुझे तो आता नहीं, मैं क्या करूं। ये है छठी। और नैष्कृतों का अर्थ क्या है? दूसरों का अपमान करना। हाँ, दक्ष है, दूसरों के अपमान करने में दक्ष। अब एक है दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है? जो काम एक आलस है, काम में आलसी। और दीर्घ सूत्री विषाद और विषाद, विषादी, विषादी का अर्थ क्या है? आलसी, आलसी हो गया। विषादी का मतलब दुखी रहता है, सदा उनके चेहरे को देखोगे लगेगा जहाज डूब गया है इसका, बता रही क्या है। और फिर लिखा है दीर्घ सूत्री का क्या अर्थ है? जो काम एक घंटे में करेगा वो साल में नहीं करेगा। दीर्घ सूत्री चाय हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आलसी कैसा? चिट्ठी लिख दी है, पोस्ट के डब्बे में डालने जाना है, आलसी इतना है, खटिया से उठता नहीं है, खिड़की से डाली है, कोई जाके डाल के आ जाएगा। और दीर्घ सूत्री का देखेंगे आप, यहाँ काम करने की प्रणाली बहुत दीर्घ सूत्री है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है वो 5 दिन में नहीं होता है। सरकारी ऑफिसों में काम जो है बहुत दीर्घ सूत्री है, फाइल आगे चलता ही नहीं है जब तक उसके ऊपर लड्डू नहीं रखो, चलता ही नहीं आगे। फाइल के पांव नहीं होते हैं जब तक कुछ पैसा नहीं रखो, सब दीर्घ सूत्री है। सूखा प्रसाद वाले हो तो कितने हैं भाई? तामसिक कर्ता कितने हो गए? अयुक्त हो गया, प्राकृत हो गया, स्तबद्ध हो गया 3, शठो हो गया 4, नैष्कृत 5, आलसी 6, विषादी 7, दीर्घ सूत्री 8। बहुत उल्टा है ये कर्ता, बहुत खराब है जी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं अयुक्त का अर्थ है जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो अपने स्वभाव से कार्य करता है, जो उसके मन में आता है वही करता है। तो करना कैसे चाहिए? बोला करना चाहिए गुरु के निर्देश से, और ये करता है अपने मन से, तो इसको कहते हैं प्राकृत। दूसरों का अपराध करे, दूसरों का अपमान करे, वो निराग, वो नैष्कृति है। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं जो ज्ञानी है, क्योंकि ये विभाग ज्ञान का है ना, जो ज्ञानी है उनको सात्विक त्याग करना चाहिए, उनको सात्विक ज्ञान का शरण लेना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए, सात्विक कर्ता बनना चाहिए। तो इसको कहते हैं ज्ञान का संन्यास। ये है इस विभाग का अर्थ। ज्ञान के संन्यास का अर्थ क्या है? सारे काम सात्विक
होने, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता,
सब कुछ सात्विक, सात्विक त्याग से लेके ये। अब कहते हैं चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो भक्तों का ज्ञान है ना वो गुणों से ऊपर है, और उनका जो कार्य है वो मेरे लिए है, तो इसलिए भक्ति योग तीनों गुणों से ऊपर है। इसके बाद चक्रवर्ती पाद ने ग्यारहवें स्कंद से सारे कार्यों को तीन गुणों के अंतर्गत करते हैं ना, उन्होंने चौथा बात लिखा है कि निर्गुण कार्य कौन सा है। अभी तक हमने तीन गुणों के अंतर्गत पढ़े ना, अब इन सबको निर्गुण कहते हैं, जो भगवान के लिए किया जाए वो तीनों गुणों से ऊपर है। तो उन्होंने कुछ श्लोक दिए हैं ग्यारहवां स्कंद से अपने तात्पर्य में। अब लिखते हैं जो ज्ञानी है वो सात्विक कार्य करते हैं, और जो कर्मी है वो राजसिक कार्य करते हैं, और जो तामसी है वो तामसिक कार्य करते हैं। ये गीता के इस विभाग से समझना चाहिए। और कहते देखो चौदहवें अध्याय में ज्ञानी भी अंत में भक्ति के द्वारा, अभिविचारण भक्ति योगे ना, गुण ज्ञान को त्यागता है, गुणातीत हो जाता है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के, यहां तात्पर्य प्रभुपाद जी का मेरे ख्याल में एक पेज ही है, लंबा छोटा ही है। शास्त्र ने कहा है कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, यह अपने मन से करता है। जो ऐसे शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करता है ये भौतिकवादी है सामान्य रूप से, वो अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार करता है, न कि शास्त्र के अनुसार करता है। ये अयुक्त की परिभाषा चल रही है, ये अयुक्त की परिभाषा है। फिर आ गया नैष्कृति की परिभाषा, ये सभ्य नहीं है, ये बहुत बड़ा क्या करता है, दूसरों का दक्ष होता है अपमान करने में। और एक शब्द और क्या लिखा है, कनिंग, कपटी है ये सौम्य नहीं होता है, जेंटल नहीं होता है, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है, नैसर्गीय क्या है, हाँ नैष्कृति की परिभाषा है। पहली परिभाषा किसकी थी, पहली थी अयुक्त की, अब यह नैष्कृति की, अब है आलसी है, अपना कार्य नहीं करते, बाद में करूंगा, इसलिए वो सदा दुखी रहते हैं, ये विषादी की परिभाषा हो गई। और फिर दीर्घ सूत्री की परिभाषा है, और यहां हमारा 28 श्लोक पूरा हो गया, कल हम 40 श्लोक तो पूरा करेंगे, फिर आगे भगवान की जो इच्छा चलेगा। ये अभी पूरा करके खत्म करना है। अभी बुद्धि धृति का तीन गुणों के अनुसार होगी, बुद्धि धृति आदि, ये 50 तक ऐसे चलेगा खिचड़ी वाला। शनि रवि को तो भी करना है, तो शनि को तो करेंगे, कर सकते हैं शनि को, मेरा सुन। अब इसको 4-5 दिन में खत्म करें, इस साल से पहले इसको पूरा करना है, इस महीने में।